ओम शांति। एक छोटी सी कहानी से इस क्लास की शुरुआत करते हैं। लियो टॉल्स्टॉय नामक एक रूस के लेखक ने जिसे लिखा है, और जब जब हम इसे सुनते हैं ऐसे लगता है कि जैसे ये हर एक मनुष्य की कहानी है। दिखाया है एक किसान पखोम नाम का, जो कि एक गांव में रहता है छोटे से, बहुत गरीब है और बहुत मेहनती भी है। एक दिन एक सन्यासी उसके घर आता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो उधर एक दूसरा गांव है साइबेरिया नाम का, वहाँ जाना चाहिए, वहाँ पर ज़मीन बहुत बहुत सस्ती है। तो वो किसान सोचता है कि बात बहुत अच्छी है। रात भर जागते रहता है, सोचते रहता है कि कब तक मैं इस तरह मेहनत करते रहूं। और सुबह जब होती है तो पक्का कर लेता है कि अभी मुझे जाना ही है उस गांव में, और यहाँ की जो भी ज़मीन थी सब कुछ बेचकर वो उस नए गांव में पहुँचता है। और वहाँ पर पहुँचने के बाद लोगों से पूछता है, यहाँ ज़मीन का क्या भाव है? तो वो लोग कहते हैं, ज़मीन का भाव? यहाँ पर ज़मीन तो मुफ्त है, केवल एक ही शर्त है, सुबह से लेकर भागना चालू करो, जितना तुम भागोगे वो ज़मीन तुम्हारी होगी, केवल शाम तक वापस पहुंचना है उसी स्थान पर जहां से चालू करोगे। फिर से वो व्यक्ति रात भर नहीं सो पाता, क्योंकि सोचते रहता है कितना भागू और कितना नहीं, क्योंकि जितना मैं भागूंगा उतनी ज़मीन मेरी होगी। सुबह होते ही वो व्यक्ति वहां पहुंचता है, सारा के सारा गांव वहां एकत्र हो जाता है उसे देखने के लिए। एक लकीर होती है और वो किसान वहां से अपनी यात्रा चालू करता है, तेज भागना चालू करता है, और तेज और तेज, क्योंकि मन में इतना उमंग रहता है कि जितना मैं भागूंगा उतनी जमीन मेरी हो जाएगी। और भागते जाता है और भागते जाता है, भागते भागते उसे भूख लगती है, तो खाना उसके पास होता है, पर वो सोचता है यदि खाना खाने के लिए रुक गया तो जमीन थोड़ी सी कम हो जाएगी, इसके लिए खाना भी फेंक देता है और भागने लगता है और भागने लगता है। भागते भागते उसे प्यास लगती है, परंतु सोचता है यदि पानी पीने के लिए मैं रुक गया तो ज़मीन थोड़ी सी कम हो जाएगी। भागता है और भागता है और हाँफता है, और धीरे धीरे वो पानी की बोतल भी फेंक देता है, और ज़ोर से भागता है और ज़ोर से भागता है। दोपहर हो जाती है, भागना चालू, फिर सोचता है वापस भी तो जाना है, क्योंकि शर्त ये थी कि वहीं पर वापस पहुंचना है। पर जैसे ही मन में ये संकल्प आता है कि अभी वापस जाऊं, देखता है कि सामने वाली जो जमीन है बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा उपजाऊ, उर्वर। सोचता है थोड़ा सा भाग लेता हूं फिर वापस मुड़ जाऊंगा, और भागता है और भागता है और हाँफता है और हाँफता है। 2 बज जाते हैं, फिर सोचता है अब तो वापस लौटना ही है, नहीं तो पहुंच नहीं पाऊंगा। परंतु जैसे ही यह संकल्प आता है, देखता है सामने वाली जमीन जो है थोड़ी ज्यादा ही सुंदर दिखाई दे रही है, सोचता है थोड़ा सा भाग लूं, और भागता है और भागता है और भागता है। करते करते 4 बज जाते हैं, और तब वो सोचता है कि अब तो वापस मुझे लौटना ही चाहिए। और फिर वो लौटता है और अब बहुत तेजी से भागता है क्योंकि समय बहुत कम है और उसे पहुंचना है। इतना तेजी से भागता है और हांफता है कि आज तक कभी भागा नहीं होगा। इतना तेजी से भागते जाता है, भागते जाता है, भागते जाता है। सूर्य उधर डूबने लगता है और भागता है और भागता है और भागता है। फिर देखता है दूर गांव वाले दिखाई दे रहे हैं, अंतर थोड़ा ही रह गया है। फिर तो ऐसा भागता है कि जैसा कब ना भागा हो। और सूर्य डूबने लगता है और तेज और तेज और तेज, इतना तेज बस अब थोड़ा ही अंतर रह जाता है, उधर सूर्यास्त हो जाता है और वो व्यक्ति धड़ाम से नीचे गिरता है। बस थोड़ा ही अंतर, वो गिरता है और मर जाता है। गांव वाले कहते हैं कि आज एक पागल फिर मर गया। उसका नौकर उसकी बॉडी को, उसके शरीर को दफनाता है 6 फीट। कहानी वहां पूरी होती है। हाउ मच लैंड डस द मैन नीड, उस कहानी का ये शीर्षक है कि मनुष्य को कितनी जमीन चाहिए। उस पखोम नाम के किसान के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। क्या हो सकता है उत्तर? लालच। किस बात का लालच? और भागना और भागना और भागना। ये कहानी उस किसान की नहीं परंतु हर मनुष्य की है। हर एक मनुष्य भी ऐसा ही भाग रहा है, ऐसा ही भाग रहा है, ऐसा ही भागते जा रहा है, भागते जा रहा है, भागते जा रहा है, भागते जा रहा है। फिर ख्याल आता है कि अब लौट चलना है, परंतु सामने की जमीन कैसी है? थोड़ी ज्यादा ही सुंदर दिखाई दे रही है। और एक थोड़ा घर मिल जाए, एक थोड़ी सी गाड़ी आ जाए, थोड़ा सा और कुछ खरीद ले, और थोड़ा सामान मिल जाए, उतना हो जाए, उसके बाद में तीव्र पुरुषार्थ का मार्ग चुनेंगे, उसके बाद में सोचेंगे बाप समान बनने का क्या करना है, और थोड़ा सा भागू, और थोड़ा सा भागू, उसके बाद सोचेंगे, फिर उसकी भगवान की आवाज सुनेंगे, भगवान कह रहा है मैं आ चुका हूं, अब तुम्हें लेने चलना हूं, ये तुम्हारी रिटर्न जर्नी है, अब ये तुम्हारी रिटर्न यात्रा है, कहां भाग रहे हो? परंतु हम कहते हैं कि बस थोड़ा सा भागता हूं। और भागता है और भागता है और हाफता है और भागता है, और ऐसे करते करते सृष्टि की शाम होने लगी है, सूर्यास्त, सूर्योदय, सूर्यास्त होने वाला है। और अब तक यदि आत्मा ने अपनी रिटर्न जर्नी नहीं चालू की तो हमारा भी वही अंजाम होगा जो उस किसान का हुआ था। भगवान आ चुके हैं। भगवान से पूछा गया इस वर्ष का क्या नाम है? कब तक चलेगा संगम युग? कब तक भगवान आकर ज्ञान सुनाते रहेंगे? 80 साल, असंख्य साकार वाणियां हो गई, असंख्य अव्यक्त वाणियां हो गई, प्यार कब से लुटा रहा है, शिक्षाएं कब से दे रहा है, वरदान दिए जा रहा है, वो सागर है कभी खाली नहीं होता। परंतु हम क्या कर रहे हैं? सुबह उठना, अमृत वेला करना, मुरली क्लास जाना, मुरली सुनना, घर वापस आना, भोजन बनाना, भोजन खाना, बीच बीच में बाबा को याद करना, नुमा शाम का योग करना, मुरली पढ़ना, मुरली पढ़ाना, ज्ञान सुनना, ज्ञान सुनाना, सेवाएं करना, रात को बाबा को याद करके सो जाना, ये है साधारण पुरुषार्थ। ये क्या है? साधारण पुरुषार्थ। तुम्हें क्या करना है? तीव्र तीव्र अर्थात जिसमें सब कुछ तीव्र हो, अमृत वेला में भी तीव्रता हो, ऐसा अमृत वेला कि जिसमें ऐसा अनुभव हो जाए आत्मा को, आज सुबह की अव्यक्त मुरली, इस स्थिति में यदि कोई एक सेकंड भी टिक जाए तो उसका प्रभाव सारे दिन भर में विशेष शांति की शक्ति के अनुभव के रूप में होगा। क्या ऐसा अनुभव अमृत वेला हो रहा है? क्या ऐसी मुरली की लगन कि जैसे गोपियां खो जाती थी। उद्धव आया समझाने के लिए गोपियों को, अरे गोपियों तुम क्या कर रही हो, जिसे तुम भगवान समझ रही वो तो, जिसे तुम कृष्ण समझ रही वो भगवान है, उसके पीछे ऐसी दीवानी ऐसी पागल नहीं हो जाओ। वो उन्हें ज्ञान सुनाने लगता है, परंतु वो ज्ञान कहाँ सुनेगी, उसके पास तो ज्ञान की गर्मी थी, परंतु गोपियों के हृदय में प्रभु प्रेम की आग जल रही थी। क्या ऐसे हम दीवाने हो गए हैं? क्या ऐसी दिनचर्या हो गई है? क्या ऐसी सेवाओं के प्रति हमारी वृत्ति दृष्टि हो गई है? क्या सेवाओं में ऐसी निरंकारिता, निमित्त भाव, कूट कूट के हमने भर लिया है कि जो हो रहा है वही करा रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। अव्यक्त संदेश एक गुलजार दादी के द्वारा आया था कभी, जिसमें बाबा ने उस संदेश में गुलजार दादी को और प्रकाशमणि दादी को इमर्ज किया था वतन में, और बाबा ने दादी प्रकाशमणि से कहा था कि बच्ची आपने कैसा सेवाओं का विस्तार किया, और बाबा महिमा करने लगे, और दादी ने उत्तर दिया, बाबा मैं नहीं आप। संदेश वहीं पूरा होता है, मैं नहीं आप, ये आप कर रहे हो, ये आप करा रहे हो, मैं कौन। क्या ऐसा भाव हमारे मन में भी आया है? क्या ऐसे कर्मयोगी भी हम बन गए हैं? क्या ऐसे निरंतर योगी बन गए हैं जिसमें हृदय की तार सतत ऊपर जुड़ी रहे? यदि हमारा भागना अभी भी चालू है संसार की ओर, संसार के साधनों की ओर, तो हमें रुकना होगा। तो अभी हम फिर से एक योग का प्रयोग करेंगे, समय कम है, और फिर हम थोड़ी अनुभव की बातें सुनाएंगे, तो सभी अलर्ट होके बैठ जाएंगे। इस योग के प्रयोग में 21 बातें, बाप को फॉलो करने की, योग के द्वारा, योग के साथ साथ अनुभव हम करेंगे, किन किन बातों में बाबा को फॉलो करना है। अभी अभी जो बाबा के अव्यक्त महावाक्य चले 31 दिसंबर 2017 में, बाबा से प्रश्न पूछा गया, अंतिम प्रश्न मुरली का, कि फॉलो फादर कैसे करे। पढ़िए सबने मुरली, अभी अभी जो महावाक्य चले उसमें बाबा ने 4 उत्तर दिए हैं फॉलो फादर करने के लिए। पहला अटेंशन, दूसरा नशा, तीसरा अभ्यास, और चौथा जोश। पहला अटेंशन, दूसरा अभ्यास करो, अभ्यास प्रैक्टिस, तीसरा नशा होना चाहिए तुमको, और चौथा बताया था जोश। जोश दिखाओ कि हम तैयार हैं। तो फॉलो फादर करने की कौन सी वो चीजें हैं, किन किन बातों में हम बाबा को फॉलो करें। पहले हम गिना देते हैं और फिर उसको हम योग में अभ्यास करेंगे। जो बाप के संकल्प वो मेरे संकल्प, पहला संकल्प, दूसरा बोल, तीसरा कर्म, चौथा संबंध संपर्क और पांचवा चलन। इन पहली पांच बातों में बाप समान, जो उसके संकल्प वो मेरे, जो उसके बोल वो मेरे, जो उसके कर्म वो मेरे, जैसे उसके संबंध संपर्क थे डिटैच्ड, किसी में भी आसक्ति नहीं, वैसे हमारे भी संबंध संपर्क हो, इतनी पवित्रता उस संबंध में हो, इतनी पवित्रता एक ब्राह्मण के दूसरे ब्राह्मण के साथ संपर्क है, संबंध है उससे हो, इतनी पवित्रता एक ब्राह्मण के संसार की आत्माओं के साथ जो संबंध है, उतनी उन संबंधों में हो। और पांचवी बताया चलन, ये पांच। फिर दो, तन और धन। मन बोल दिया संकल्प, प्लस टू तन और धन। ये जो तन दिया है सुबह भी बताया तपस्या के लिए है, ना तो हमारे भोग के लिए ना ही किसी और के। ब्राह्मण अर्थात अनटच्ड, किसी का स्पर्श इसको ना हो, ऐसी अनटच्ड प्यूरिटी, ऐसा ये तन इस यज्ञ की सेवा के लिए और तपस्या के लिए स्वाहा। दूसरा बताया धन, जो धन है वो परिवार की पालना, भविष्य के लिए जमा, परंतु उसका एक हिस्सा इस यज्ञ के लिए। बाबा ने कई बार कहा है, गरीबों का एक पैसा भी अमीरों के लाखों के तुलना में है। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है, परमात्मा तालाब गरीबों के पाई पाई से भरेगा। वो चाहता तो किसी बहुत बड़े साहूकार को टच करा सकता है, और यहां बहुत बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंगें, सब कुछ तैयार हो सकती है एक सेकंड में, परंतु परमात्मा तालाब गरीबों के पाई पाई से भरेगा। तो इस यज्ञ में जिसने जितना सहा किया वो व्यर्थ नहीं जाएगा। एक है सोच सोच के बलिहार जाने वाले, एक है धक से बलिहार जाने वाले। तन और धन पांच, और ये दो, और दो संस्कार और बुद्धि। जो बाप के संस्कार थे देने के, या अन्य जो भी, वो मेरे हो। जैसी उसकी बुद्धि दिव्य थी, वैसी मेरी भी दिव्य हो। ऐसी बुद्धि जिसमें अपवित्रता, छल, कपट, दंभ स्पर्श ना करे, ऐसी बुद्धि कि जो षड्यंत्र ना करे किसी के विरुद्ध, ऐसी बुद्धि जो कि दिव्य हो, पवित्र हो, शुद्ध हो, स्वच्छ हो। रामायण में दिखाया है, विभीषण राम की शरण में आता है, सभी वानर कहते हैं इसको मत लेना, ये शायद रावण की चाल होगी, इसको मत लेना। राम क्या कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका हृदय निर्मल है, जो स्वच्छ हृदय से मेरे पास आया है, वो मुझे प्राप्त करेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट, मुझे कपट छल और छिद्र, छिद्र अर्थात दूसरों के दोष देखने वाले मुझे पसंद नहीं है। Blessed are the pure in heart, for they shall see the Lord. धन्य है वो जिनका हृदय स्वच्छ है, वो भगवान को देखेंगे पाएंगे. बुद्धि और संस्कार दो और चार, दृष्टि, वृत्ति, दृष्टिकोण और आदतें. दृष्टि बाप के समान, वृत्ति बाप के समान, दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव, व्यू पॉइंट, देखने का नजरिया बेहद का. और चौथा बताया आदतें. एक बताया था संस्कार, संस्कार बहुत सूक्ष्म और सबसे गहरे तल में है, आदतें थोड़ी ऊपरी तल में है, पर दोनों ही अवचेतन मन के में है, चेतन में दोनों भी नहीं है, दोनों ही सबकॉन्शियस माइंड का भाग है, क्योंकि आदतें भी पक्की हो गई है. जैसे आज सुबह की मुरली में बाबा ने कहा तुम्हारी दो आदतें पक्की हो गई है, एक भक्ति के जीवन की आदतें और एक विकार के जीवन की आदतें. इसके लिए, इसको मिटाने के लिए तुम्हें दो संकल्प रखना पड़ेगा, मैं बिंदु और बाबा भी बिंदु. संसार में दो बातें कही जाती है, एक संबंध, एक संपत्ति. दोनों ही बातों को बाबा में समा दो. इसके लिए दो शक्तियां धारण करो और आगे की सारी मुरली. दृष्टि, दृष्टि में पवित्रता. सेवेंटी वन की मुरली है. बाबा ने कहा है देह सांप है, सांप में विष होता है. इसके लिए केवल मस्तक मणि को देखो. दृष्टि, वृत्ति, दृष्टिकोण और चौथा आदतें. अपनी आदतों को डिवाइन हैबिट्स बना देना है, नई आदतों का सृजन करना है. मुरली के चिंतन की आदत, अमृत वेला अधिक से अधिक अशरीरी हो जाए वो आदत, हर आत्मा की सेवा करने की आदत. ऐसे नहीं कि ये छोटे हैं और ये बड़े हैं, सब. और चार, भावना, स्मृति, कल्पना, इमेजिनेशन और चौथा स्वप्न. इन चारों में भी बाप समान. भाव और भावना, स्मृतियां, मेमोरीज, कल्पना, व्यक्ति कल्पना करते रहता है. और चौथा स्वप्न. स्वप्न भी इतने पवित्र हो जाए. स्वप्न पवित्र तब होंगे जब दिनचर्या पवित्र होगी. यदि दिनचर्या में दमन हो रहा है, यदि दिनचर्या में विकारों की आकर्षण है, तो रात में निकलेंगे स्वप्न बाहर विकार के रूप में. ये चार. और चार अंतिम, सुनना. क्या हम सुन रहे हैं? अभी अभी मुरली चली थी परचिंतन और परदर्शन पर संडे. परचिंतन और परदर्शन दोनों ही रोमिंग की तरह है मोबाइल का. रिसीव करो और कॉल करो, दोनों में ही कटेंगे. कोई कहे कि हमने तो नहीं की ग्लानी, हमने तो खाली सुना. किसने कहा था सुनने को? सुनना, ये जो बाबा ने एक अव्यक्त मुख मुरली में कहा है, कान तुमको मिले हैं केवल और केवल भगवान की वाणी सुनने के लिए, आंख तुमको मिली है केवल और केवल उसको देखने के लिए. इस संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है, आंखों सहित सब कुछ नष्ट हो जाएगा इन आंखों से जो कुछ देख रहे हो. तो पहला सुनना, फिर खाना, भोजन. कितनी याद में हम खा रहे हैं. यहां ऐसी कितनी माताएं हैं जो रोज भोग लगाती है, रोज. और बाकी माताएं शिव बाबा को बच्चा बनाया कि नहीं बनाया? बनाया और उसको भूखा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योम्या भक्त्या प्रयश्यति। हे अर्जुन, जो भक्त पत्र पुष्प या फल कुछ भी मुझे अर्पण करके खाता है उसे मैं अनन्य भाव से स्वीकार करता हूं, चाहे माताएं हो चाहे भाई हो, अर्पण में भोजन में क्या हो, अर्पण में था, और फिर उसको स्वीकार करें। खाना, तीसरा लिखना, जो हम लिख रहे हैं, जो मैसेज टाइप कर रहे हैं और जो मेल भेज रहे हैं उसमें भी क्या हो, अनासक्त भाव हो। एक सन्यासी अपने गुरु से पूछता है क्या सन्यासी ईमेल करना चाहिए, ईमेल मेल करना चाहिए? तो वो कहता है यस, एज लॉन्ग एज देयर आर नो अटैचमेंट्स। मतलब जब तक अटैचमेंट्स नहीं है तब तक कर सकते हो। अटैच करते हैं ना मेल में कोई फाइल फोल्डर, करो परंतु अटैचमेंट ना हो। लिखना क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कौन सी बातें, लड़ाई झगड़े की, मनाने की, रूठने की, रूसने की, और आजकल वो इमोजीज फेसेस लिखते नहीं है, गुस्से वाला चेहरा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो भी बोलना ही है, वो लिखना भी बाप समान। और लास्ट 21वीं बात, स्पर्श, टच। जो स्पर्श हम करते हैं क्या उस स्पर्श में पवित्रता है? स्पर्श केवल उंगली से नहीं, हाथ से नहीं, संकल्प और नजर से जो स्पर्श कर रहे हैं क्या उसमें पवित्रता है? तो बाप समान बनने की ये 21 बातें। तो अभी सभी अलर्ट होके बैठेंगे, भ्रुकुटी के मध्य में स्थित स्तन के भव्य भाल पर विराजमान मैं एक चमकता सितारा हूं। मुझ आत्मा की किरणें समस्त देह में फैल रही, प्रकाश का पुंज मैं आत्मा चारों ओर अपनी किरणें फैला रहा हूं। संपूर्ण शांत मन वातावरण में अलौकिकता चहुओर अविरल अव्यक्त धारा संपूर्ण मौन मन एकाग्र और मैं आत्मा धीरे धीरे इस तन को छोड़ जा रही हूं उस अव्यक्त धाम की ओर। फरिश्ता स्वरूप अव्यक्त वतन वासी बाप दादा सम्मुख भगवान का वरदहस्त सिर पर निरंतर बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता भव। बाबा वरदान दे रहे हैं। मैं बाप समान संपन्न आत्मा हूं, आज मैं यह प्रतिज्ञा करती हूं, मेरे संकल्प वही होंगे जो बाप के संकल्प है, जो उसके बोल वो मेरे बोल, जैसे उसके कर्म वैसे मेरे कर्म, जैसे वो सभी संबंध संपर्क में अनासक्त है, मैं भी ऐसे ही लगाव मुक्त योगी हूं। मेरी चलन अलौकिक है, जैसे उसने अपना शरीर इस यज्ञ में स्वाहा कर दिया, जैसे उसने अपना सारा धन इस यज्ञ सेवार्थ लगा दिया, मैं भी फॉलो फादर करने वाली आत्मा हूं। बाबा की रूहानी दृष्टि मुझ पर है, जैसी उसकी बुद्धि वैसी मेरी, जो उसके संस्कार वो मेरे संस्कार, जैसी उसकी दृष्टि है जैसी उसकी वृत्ति, जैसी उसका दृष्टिकोण और जैसी उसकी आदतें, इन सभी में मैं बाप समान हूं। उसकी भावनाएं अब मेरी भावनाएं, जैसी उसकी स्मृति उसकी कल्पनाएं, उसके स्वप्न अब मेरे स्वप्न हैं, जैसे वो ब्रह्मा बाप इंद्रिय चीत बना, वैसे मैं भी मेरा देखना सुनना खाना स्पर्श लिखना सब कुछ उसके समान है। मैं बाप समान आत्मा हूं, और आज से मैं इस ब्राह्मण परिवार की हर आत्मा को भी बाप समान रूप में ही देखूंगी। सभी धीरे धीरे अपने ही स्थान पर खड़े होंगे फिर से, कोई आवाज नहीं, बाप समान फरिश्ता स्थिति, अब अपने ही स्थान पर एक बार घूमेंगे और संपूर्ण ब्राह्मण परिवार को बाप समान एक एक आत्मा है ऐसे देखेंगे। अत्यंत धीरे धीरे अपने ही स्थान पर घूमेंगे, गोल घूमेंगे, आत्मिक दृष्टि ये प्रभु परिवार है, एक एक आत्मा महान है, एक एक आत्मा को स्वयं भगवान ने चुना है, ये प्रभु का अंजुमन है। आहा कैसा सुंदर यह दृश्य है, इतनी सारी महान बाप समान आत्माएं, इन सब के दर्शनों से ही मैं तृप्त हो गई। ये वही है मंदिरों में जिसकी पूजा हो रही है, मैं बाप समान फरिश्ता हूं। अब धीरे धीरे अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, वही अव्यक्त स्थिति फरिश्तों की जैसे महफिल लगी है। देव कुल की सभी महान आत्माएं हैं, मन भावनाएं दृष्टि और वृत्ति संपूर्ण पवित्रता से भर चुका है और देख रहा हूं स्वयं अव्यक्त बाप दादा मेरी आंखों के सामने, और यह दृश्य देखकर बाबा भी कितने खुश हो रहे हैं कि मेरा ये परिवार एक मत एकता के सूत्र में पिरोया हुआ है। मैं बाप समान फरिश्ता हूं। ओम शांति।